आप सभी ज्ञान सरोवर परिसर में आए हो। 3 दिन के लिए आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। अब तक के जो विषय आपने सुबह में सुने वो तो मैनेजमेंट से संबंधित विषय रहे, लेकिन ये एक विषय ऐसा है जो हमारे संस्कारों से, हमारे जड़ों से, कनेक्टेड है। क्योंकि शायद आज संसार में या भारत में खास करके ये संस्कार की जड़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, और इसलिए आवश्यकता महसूस हुई है कि उसमें भी जो रहस्य की बातें हैं उस रहस्य का उद्घाटन हम आप सबके सामने करें। श्रीमद् भगवद् गीता भारत का शिरोमणि शास्त्र है। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। दुनिया में एकमात्र शास्त्र ऐसा है जिसमें भगवान वाच शब्द है। बाकी दुनिया के कोई शास्त्र में भगवान वाच शब्द नहीं आता है। दूसरी बात कि इस शास्त्र के अंदर कहा जाता कि सभी वेदों का सार समाया हुआ है। इसमें एक ऐसा अमृत तत्व है कि जिससे मनुष्य का जीवन अमरत्व को प्राप्त करने जैसा हो जाता है। कई आत्माओं ने इसका अध्ययन दुनिया में किया है और देखा गया कि जिन्होंने भी गीता का अध्ययन किया है वो महानता के शिखर पर पहुंचा है। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, चाहे वो महात्मा गांधी क्यों ना हो, चाहे वो आइंस्टाइन क्यों ना हो, दुनिया की जितनी भी महान हस्तियां हो गई उन्होंने गीता के अध्ययन से ही उसके अंदर की जो ताकत है उसको अपने जीवन के अंदर लाने का प्रयत्न किया, उसकी शक्ति को अपने जीवन में लाने का प्रयत्न किया। महात्मा गांधी हमेशा यही कहते कि जब भी मैं अपने जीवन में उलझन का अनुभव करता हूं तब मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल करके बैठ जाता हूं, पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे अपनी समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। इतनी गहरी गीता है कि जिसमें हर कोई को अपना समाधान प्राप्त हो जाए। अगर एक साइंटिस्ट पढ़ता है तो उसको अपना समाधान मिल जाता है। अगर एक राजनेता पढ़ता है तो उसे अपना समाधान मिल जाता है। अगर कोई आध्यात्मिक जगत से है तो उसको अपना समाधान मिल जाता है। इतनी गहरी गीता है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे के अंदर संस्कार का सिंचन करती है, इसी तरह गीता को भी माता कहा गया है कि इसमें एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य आत्मा पढ़ता है तो उसके अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन होने लगता है। इसीलिए गीता महान है। दूसरा, उसको मां इसीलिए कहा गया है क्योंकि मां के साथ हर बच्चे का एक कनेक्शन होता है। दुनिया के सभी धर्मों का कनेक्शन कहीं न कहीं गीता के साथ है, इसीलिए गीता माता है। साथ ही अगर देखा जाए कि इसमें ऐसा विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है जो अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि उसमें वर्णवित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। गीता में कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है। संसार में मानवता अगर गायब होने लगी है तो उसका कारण है कि कहां न कहां उस मां का स्थान हमने गायब कर दिया है। और इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। तब कहा कि गीता माता है। लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम सभी जानते हैं कि महर्षि वेद व्यास जी जब साधना में बैठते थे, समाधि अवस्था में चले जाते थे, तो उस वक्त उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी। और जब उस समाधि अवस्था से नीचे आए, उन्होंने जैसे ही समझा कि इतना अमूल्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है कि मुझे इसको लिपिबद्ध करके संसार में मानवता को पहुंचाना चाहिए। लेकिन समाधि अवस्था ऐसी अवस्था होती है कि जब नीचे आते हैं व्यक्ति, कॉन्शियस लेवल पर आते हैं, कुछ चीजें भूल जाते हैं। तो कहा जाता कि पहले दिन की गीता का ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा, क्योंकि महर्षि वेदव्यास जी उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाए। दूसरे दिन उन्होंने भगवान से विनती किया कि हे प्रभु, आप इतना अमूल्य ज्ञान मुझे दे रहे हो, परंतु अगर मैं उसको लिपिबद्ध नहीं कर पाया तो ये मनुष्य तक पहुंचेगा कैसे? कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिल जाए। तब कहा जाता कि उन्हें कहा गया कि आप गणेश जी का आवाहन करो, गणेश जी लिखने के लिए आएंगे। और तब वो गणेश जी का आवाहन करते हैं बहुत सुंदर शब्दों में। महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है, जिसमें गणेश जी का आवाहन करके उनको लिखने के लिए निवेदन करते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था में, अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरे ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट उन्होंने एडमिट किया है कि यह ग्रंथ मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है, यानी हकीकत नहीं है। इट इज द इमेजिनेशन ऑफ हिज ओन माइंड। भावार्थ क्या है कि आज जैसे घर में बच्चा होता है और उस बच्चे को हमें यह समझाना होता है, एक ज्ञान की तथ्य भरी बात समझानी होती है, सिंपल सी, कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। लेकिन अगर रोज सीधा उपदेश दिया जाए तो बच्चा समझेगा, शायद उसके मर्म को समझ न पाए। लेकिन उसी तथ्य की बात को समझाने के लिए हम अपनी ही मन की कल्पनाओं से कहानी की रचना करें, जिसमें एक सच का पात्र लिया जाए, एक झूठ का पात्र लिया जाए, और झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है, सच बोलने से क्या प्राप्ति होती है, इसको स्पष्ट किया जाए, तो शायद वो कहानी वो बच्चा बहुत प्यार से सुनेगा समझेगा, जीवन भर शायद याद रखेगा। और जीवन में कब ऐसे मोड़ अगर आए तो उसमें से प्रेरणा प्राप्त करेगा कि मैं सच बोल करके तो देखूं। भावार्थ ये कि जो उसमें तथ्य था कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ये सत्य है। परंतु जो कहानी हमने कही वो कहानी अपने मन की कल्पनाओं का विस्तार था। ठीक इसी तरह जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, और वो ज्ञान इतना ऊंचा ज्ञान था कि शायद आज की दुनिया के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। ये महर्षि वेदव्यास जी ने पहले से समझ लिया था कि मनुष्य एक ज्ञान की गहरी बातों को समझ नहीं पाएंगे, उनको समझाना हो तो उनके लिए कहानी का निर्माण मुझे करना होगा। वो कहानी उनके मन की कल्पनाओं की विस्तार है। ज्ञान समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ, जो कथा का निर्माण किया वो उनकी मन की कल्पनाओं का विस्तार है। और जो उन्होंने महाभारत के आदि पर्व के 77वें श्लोक में स्वयं एडमिट किया है। लेकिन दुनिया में अक्सर कथाकार ये बातें नहीं बताएंगे आपको, और क्यों नहीं बताएंगे ये मैं नहीं समझ पाती हूं, लेकिन वो नहीं कहेंगे आपको कि ये बात उन्होंने स्वयं एडमिट की हुई है। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास जी बहुत इंटेलिजेंट थे, तभी तो समाधि अवस्था में जब बैठते थे और वो ट्रांसेंडेंटल स्टेज में जब चले जाते थे और उस अवस्था में इतना ऊंचा ज्ञान प्राप्त होते थे, माना जिसको कहा जाए कि उस समय उनकी कॉन्शियसनेस किस लेवल पर होती है। कॉन्शियसनेस के चार लेवल बताए जाते हैं मैनेजमेंट में। एक है अनकॉन्शियसनेस, जब नींद में होते हैं तो अनकॉन्शियसनेस या सबकॉन्शियसनेस लेवल पर होते हैं, जब व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो अनकॉन्शियसनेस लेवल पर होता है। उससे ऊपर है एक सबकॉन्शियस लेवल, जो नींद में अक्सर ड्रीम्स में होता है, सबकॉन्शियस लेवल पर उसका माइंड चल रहा है। तीसरा है कॉन्शियस लेवल, और चौथा है सुप्रा कॉन्शियस लेवल। सुप्रा कॉन्शियस लेवल कहने का भावार्थ के समाधि अवस्था यानी वो सुप्रा कॉन्शियसनेस लेवल जिनमें उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, बहुत गहराई वाला ज्ञान, बहुत ऊंचा ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको लिखने के लिए उस समय कोई ऋषि मुनि काम में नहीं आए या उनकी शक्ति नहीं थी लिखने की, नहीं तो क्या महर्षि वेदव्यास जी के साथ में और कोई ऋषि मुनि नहीं थे? किसी को भी बुला सकते थे लिखने के लिए, आप लिख लीजिए। लेकिन किसी ऋषि मुनि तक के बस की बात नहीं थी, मनुष्य की तो बात ही छोड़ो। सुप्रा कॉन्शियसनेस लेवल पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको लिखने के लिए गणेश जी का आवाहन किया गया, गणेश जी को कहा जाता है लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि का देवता, जिसके पास बहुत बुद्धि थी, विजडम थी, यानी बुद्धि के देवता गणेश जी को जिसके भी सुप्रा कॉन्शियसनेस लेवल की जो स्टेज थी उस कारण उनका आवाहन किया गया लिखने के लिए, वो ज्ञान कितना ऊंचा होगा सोचने की बात है। क्या आज का मनुष्य कितना समझ पाता होगा? और इसीलिए आज लोग गीता पर टीकाएं लिखते हैं, समझाई नहीं तो टीकाएं नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। मैं जब ये गीता का रिसर्च कर रही थी, 20 गीता मैंने लिया था, 20 गीताओं को लेकर के मैं स्टडी कर रही थी, लेकिन हर श्लोक का भावार्थ हर गीता में अलग किया हुआ था। हर गीता में अलग, एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। तब मुझे महसूस हुआ कि सचमुच आज के मनुष्य के बस की बात नहीं है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि जिसको तब रियलाइजेशन हुआ कि जो एक समाधि अवस्था यानी सुप्रा कॉन्शियसनेस लेवल में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसको लिखने के लिए अगर कोई मनुष्य नहीं था, कोई महर्षि नहीं था, कोई इंटेलेक्चुअल नहीं था उस समय का, लेकिन साक्षात बुद्धि के देवता को अगर लिखना पड़े, उसका आवाहन किया जाए, तो कितना ऊंचा होगा। आप सबको मालूम होगा कि कहा जाता है कि जब गणेश जी आए लिखने के लिए तो उन्होंने एक शर्त रखी, मालूम है ना शर्त? तो नहीं मालूम। गणेश जी ने शर्त रखी वेदव्यास जी के सामने कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं कि जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। माना आपको कॉन्स्टेंटली लिखाना होगा विदाउट स्टॉपिंग, क्योंकि मुझे रुकना पसंद नहीं है, मैं आपकी बात को कैच कर लूंगा, इसलिए मुझे ज्यादा समझाने की भी आवश्यकता नहीं है, है ना? लेकिन जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। वेदव्यास जी के पास कोई अल्टरनेट नहीं था, उन्होंने शर्त को मान्य कर लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी के सामने। वो मालूम होगा? नहीं मालूम है। उन्होंने शर्त रखी कि ये ज्ञान मैं समाधि अवस्था में जो ज्ञान प्राप्त कर रहा हूं उसके आधार पर लिखवा रहा, और इसलिए लिखवाते समय जब समाधि अवस्था में मैं बोलूंगा, अगर उस समय में कुछ आगे पीछे हो जाए बोलने का मेरा, तो आप बिना समझे नहीं लिखेंगे, हर बात को अच्छी तरह समझ के लिखेंगे। हाँ, बांध दिया, एक दूसरे को बांध दिया। और कहा जाता है कि जब पहला श्लोक ही उच्चारण किया महर्षि वेद व्यास जी ने, गीता जैसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई नहीं है दुनिया में, ये महसूस करेंगे आप, ये डेढ़ घंटा के ऐसा होना चाहिए कि पूरा 18 अध्याय हमें सुनना है इसके आधार पर। तो कहा जाता है कि जब पहला श्लोक ही उच्चारण किया कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, धृतराष्ट्र पूछता है संजय से कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है, तुम मुझे उसका वर्णन करके सुनाओ, तो पहले श्लोक में ही गणेश जी को खुद रुकना पड़ा समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये एडजेक्टिव क्यों लगाया गया धर्म क्षेत्र, वाई नॉट कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, वाई धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये जो आगे एडजेक्टिव लगाया गया कुरुक्षेत्र को, इसका भाव क्या है। तो ऐसे पहले श्लोक में ही गणेश जी को रुकना पड़ा समझने के लिए कि इसको धर्म क्षेत्र नाम क्यों दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं जब गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी अगर रुकना पड़े, और उसके बाद कहा जाता है कि एक एक श्लोक को समझते हुए गणेश जी इतने मग्न हो जाते थे, रुक जाते थे, और उन्हें होश भी नहीं रहता था कि मैं रुक गया हूं। इतना इंटरेस्टिंग ये गीता का ज्ञान है, इतना इंटरेस्टिंग। और आप समझ सकते हैं, और जब मैंने ये स्टडी किया तो मैंने ये महसूस किया कि सचमुच कितनी डेप्थ और कितना इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। और तब ये लिखाते गए वेदव्यास जी, गीता को कहा जाता है ये बहुत महान है। क्यों? क्योंकि इसमें हर स्तर के समाधान मिलेंगे। अर्जुन जैसे व्यक्ति की मनस्थिति, अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, लेकिन महाभारत का समय आया तो अर्जुन ने अपने शस्त्र छोड़ दिए, कहा मैं युद्ध नहीं कर सकता। इतना नर्वस हो गया, दिल शिकस्त हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, जिसको आज की लैंग्वेज में कहा जाए स्ट्रेस और डिप्रेशन। इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने कहा आई डोंट वांट टू फाइट। उसका समाधान, उसकी मनस्थिति का समाधान गीता है। यानी डिप्रेशन के लेवल में जो लोग चले जाते हैं उसका समाधान भी गीता है। दूसरा, पारिवारिक स्थिति का समाधान भी गीता है। परिवार के अंदर झगड़े किस पर होते हैं? कुरु परिवार था, पांडव कौरव भाई भाई थे, एक पारिवारिक स्थिति का समाधान भी गीता है। सामाजिक स्थिति के समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र है और उसके कारण जो समस्या क्रिएट होती है उसका समाधान भी गीता है। एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी गीता है, क्योंकि उस समय का राष्ट्र कुर्सी का ही तो खेल था और आज की दुनिया में भी देखो तो कुर्सी का ही खेल है। तो राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी गीता है और उस समय वैश्विक स्थिति का समाधान जो दर्शाया है कि आज की वैश्विक स्थिति का समाधान भी गीता है। यानी जिसको मैनेजमेंट लैंग्वेज में कहा जाए फ्रॉम द माइक्रो लेवल टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान श्रीमद् भगवद गीता है। कैसे? तो व्यक्तिगत जीवन के अंदर आज हमारे सामने इतनी चैलेंजेस आती है और उन चैलेंजेस के से जब व्यक्ति को गुजरना पड़ता है तो उसको कभी कभी जीवन असार लगने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास, मूल्य, धैर्य, दया, सबकी हदें टूटने लगती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं और अपने जीवन को सफल कर देते हैं, जबकि कुछ लोग इसी संघर्ष में अपने जीवन को नष्ट कर डालते हैं, सुसाइड कर लेते हैं डिप्रेशन के बाद। उसका समाधान गीता है। पारिवारिक स्थिति के कुटुंब परिवार में माता पिता पुत्र मोह में अंधे होने के कारण ज्ञान चक्षु बंद है, वे धर्म तथा ज्ञानार्जन करने वाले लोगों को पांच गांव की बात तो छोड़ो लेकिन एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने को तैयार नहीं। भावार्थ ये है कि वो अपने मन में उन्हें स्थान देना नहीं चाहते हैं, न सुख से जीने देना चाहते हैं और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं चाहते। जमीन और जायदाद को लेकर के ही आज की दुनिया में भी संघर्ष है पारिवारिक स्थिति का। उसका समाधान भी गीता। महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पनाओं को तो देखो, एक ही शास्त्र में उसने हर लेवल का समाधान दे दिया तो वो कितना इंटेलिजेंट हो सकता है उसकी कल्पना आप कीजिए। ये सचमुच उसने जो कहा, मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है, तो उसकी मन की कल्पना भी कितनी इंटेलिजेंट लेवल पर चलती है। उसके बाद समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र और विकर्म तथा कुकर्मों के प्रति अंधा समाज, जो धर्म अधर्म, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई, न्याय अन्याय को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते, उससे वंचित है। उस कारण घर घर में आग लगती है, शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं, है समाज के अंदर, है बहुत है, बहुत है। इसलिए कहा कि शकुनी जैसे पात्र, आज शायद हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा है जो घर घर में आग लगा रहा है। इसी तरह धृतराष्ट्र नाम का चयन जो किया है वो भी इतना एप्ट है, जिसको कहा जाए आज की दुनिया के हिसाब से धृतराष्ट्र, कि जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठती है और पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए सत्य की दृष्टि से जो अंधा है, जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है वो और भी भयानक होता है। खाली भारत की बात नहीं है, आज हर राष्ट्र की स्थिति हो गई है, दुनिया के हर राष्ट्र की स्थिति है। इसलिए कहा धृतराष्ट्र। और संसार, वैश्विक स्थिति, क्या संसार एक विशेष संकट में स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान को भी धरा पर आकर इसके इतिहास को एक नया मोड़ देना पड़ता है। वे मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। इसीलिए गीता को कहा गया है कि योग शास्त्र, युद्ध शास्त्र नहीं कहा गया, योग शास्त्र है। कि जब मनुष्य आत्मा को योग सीखने की आवश्यकता है, तब वो जीवन को पुनः संवार सके और श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जा सके, तो एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक के सर्व लेवल्स के समाधान श्रीमद् भगवत गीता है। एक ही पुस्तक के अंदर सब कुछ बांध दिया है ना? अब वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं को देखते हैं। कुरु परिवार है और कुरु परिवार में कौरव और पांडव है। पांडव अर्थात कौन? तो भगवान से जो प्रीत करना जानते थे, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत थे। उनकी मन की कल्पनाओं के हिसाब से दिखाया है भगवान को संपूर्ण स्वरूप में श्री कृष्ण का एक आकृति दे करके उनको दिखाया है वेद व्यास जी ने। अपने संपूर्ण रूप का, ईश्वर के संपूर्ण रूप को एक श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने चित्रित किया है। बाकी इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता में कहीं पर भी श्री कृष्ण वाच नहीं आता है, भगवान वाच, क्योंकि उनकी मन की कल्पनाओं में एक संपूर्ण रूप जो आया वो श्री कृष्ण का ही वो देख पाए। और इसलिए दिखाया कि जब वो लेटे हैं तो पांडव और कौरव दोनों ही भगवान के पास जाते हैं। दुर्योधन सिर के पास बैठता है, अर्जुन पैरों के पास हाथ जोड़कर खड़ा होता है। भगवान आंखें जब खोलता है, सामने अर्जुन को देखते हैं, तो उस समय दुर्योधन कहता है, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा, भले तू मांग ले। तब भगवान कहते, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए? और एक लाइन जोड़ देते हैं कि जिस तरफ मैं रहूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सारथी बनूंगा। तो दुर्योधन ने सोचा, भगवान को मांग कर फायदा क्या, अगर उनको युद्ध करना ही नहीं है तो इससे तो अक्षौणी की सेना लेना ही ठीक है। और अर्जुन ने कहा, भगवान आप हो मेरे साथ, सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि जो प्रीत बुद्धि होते हैं ईश्वर के साथ, वो भगवान की शक्ति को पहचानते हैं कि उन्हें किसी के कर्मों के संघर्ष में आने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो गाइड करे वही बहुत है, वो ही गाइडेंस विजयी बना सकती है। लेकिन दुर्योधन विपरीत बुद्धि थे, अशुद्ध कर्म करने वाला, अपवित्र कर्म करने वाला, और इसीलिए कहा जाता, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। ठीक इसी तरह आज की दुनिया में भी अगर देखें तो विनाश काल तो है ही है, लेकिन हम किस तरफ है, पांडव है या कौरव है, ये देखना है हमें अपने आप को कि कहीं किस सेना में हम खड़े हैं, कौरवों की सेना में है या पांडवों की सेना में। तो पांडव माना कौन? तो कहा जाता कि हर मनुष्य के अंदर दो प्रवृत्ति रहती है, एक दैवी प्रवृत्ति एक आसुरी प्रवृत्ति। लेकिन जो दैवी प्रवृत्ति को विकसित करता है वो पांडव बन जाता है, धर्म पक्ष का वाचक। पांच पांडव और 100 कौरव, महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार कितना सुंदर है कि पांच पांडव और 100 कौरव। आज दुनिया में परसेंटेज कितने पर निकलता है? 100 पर निकलता है। तो आज की दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो उसमें पांडव कितने होंगे? Only 5%। और उस 5% में भी युधिष्ठिर कितने हैं? युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, कितने परसेंटेज होंगे? Only 1%। दूसरा नंबर है भीम, स्ट्रांग विल पावर, आत्मशक्ति संपन्न, आत्मबल से युक्त। आज की दुनिया में स्ट्रांग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? 1% ही हो जाता है पूरी दुनिया के 700 करोड़ के हिसाब से लिया जाए तो। तीसरा नंबर है अर्जुन, अर्जन करने वाला, जो अर्जन करना जानता है, धारण करना जानता है, भगवान ने जो कहा जी हां। आज ऐसे ज्ञान अर्जन करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? Only 1%। चौथा नंबर है नकुल, नियमों पर सिद्धांतों पर अपने जीवन को चलाने वाला। तो आज नियमों पर सिद्धांतों पर जीवन को चलाने वाले कितने परसेंटेज? Only 1%। और पांचवा नंबर है सहदेव, सहदेव सहयोग देने वाला। सहयोग देने वाले तो दुनिया में बहुत है, लेकिन निस्वार्थ भाव से अपना सहयोग देना, बिना किसी अपेक्षा से सहयोग देने वाला कितने परसेंटेज होंगे? Only 1%। ये थे पांच पांडव। आप सभी यहां गीता ज्ञान सुनने के लिए आज बैठे हैं तो पांडव तो हो ही हो, है ना? मुबारक हो आप पांडवों को। जो पांडव नहीं होगा ना वो यहां नहीं पहुंचा होगा, इस कॉम्प्लेक्स में आने के बाद भी यहां नहीं पहुंचेगा, नहीं पहुंच सकता है, गीता का ज्ञान उनके लिए है नहीं। जो यहां पहुंच गया माना पांडव जरूर है, तभी यहां पहुंचा है ना। लेकिन अब देखना है कि कितने युधिष्ठिर है इसमें, हा? कौन समझता है अपने आप को युधिष्ठिर? एनीबडी? कोई नहीं। अच्छा, जो भीम समझता है, अच्छा वो है। अर्जुन समझने वाला, अच्छा है। नकुल, सहदेव, अच्छा सहदेव है। बाकी सब जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो क्या समझते हैं? नहीं, कौरव यहां बैठ नहीं सकता है, पांडव ही है। लेकिन जो आज मैं यहां मन से देख रही हूं कि इस वक्त आप सभी अर्जुन बैठे हैं, अर्जन करने वाले, ज्ञान अर्जन करने के लिए बैठे हैं, अर्जुन बैठे हैं। इसलिए मुबारक हो आप सब अर्जुनों को, है ना। और दूसरी ओर कौरव, महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पना देखते हैं, कौरव कौन है। तो कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष के वाचक है, धृतराष्ट्र जो राजसत्ता बाहुबल या भूमि के अभिमान से युक्त, और गांधारी जो आंखों पर सदा पट्टी बांधे हुए देखते हुए देखना नहीं चाहती थी। जब मैं ये पढ़ रही थी तब मेरे मन में विचार आया कि आज अगर किसी भी कारण से अगर किसी के पति की आंखें चली जाए तो उस पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेनी चाहिए। सहारा बन, अंडरस्टैंड है। लेकिन सचमुच आज के युग की जो गांधारी है, अगर पति कोई गलत काम कर रहा है तो पत्नी देखते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, वो भी देखते हुए नहीं देखना चाहती है, आंखों पर पट्टी बांध लेती है, तो गांधारी हुई ना। पति अगर गलत काम, गलत रास्ते पर, गलत मार्ग को अपना रहा है और पत्नी अगर उसको साथ देने लगे, खुद भी आंखों पर पट्टी बांध ले, तो उसको क्या कहेंगे? गांधारी है ना, गांधारी है। और फिर मैंने सारे 100 कौरों के नामों की लिस्ट निकाली। आश्चर्य की बात थी, हाँ यही तो आश्चर्य की बात है। तो मैं सोचने लगी कि कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के नाम इतना चुन चुन करके इतने सुंदर नाम लिखते हैं, रखते हैं, हाँ? तो क्या सचमुच धृतराष्ट्र और गांधारी ऐसे माँ बाप थे जिन्होंने अपने सारे बच्चों के नाम दू से ही रख दिए? और दू का मतलब है दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं, ऐसे माँ बाप हो सकते हैं? लेकिन तब समझ में आया कि ये तो महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार है, कि एक एक कैरेक्टर को लिया है कि कलयुग के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स है, आज की दुनिया में ऐसे कैरेक्टर्स है। दुर्योधन यानी जिसने धन का दुरुपयोग किया, ऐसे बच्चे आज के समाज में है या नहीं? उस नाम से नहीं है लेकिन वो चरित्र से जरूर है ना। दुशासन जैसे पात्र आज के समाज में है या नहीं है? दुस्सह, दुश्शल, दुर्मुख, दुष्कर्ण, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, यानी एक एक इंद्रियों के साथ दुष्टता, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, दुष्कर्ण, दुर्मुख, है ना। तो सारी एक एक इंद्रियां जिसके अंदर दुष्टता का भाव है, और लास्ट में एक बहन थी वो भी दुश्शीला। शील का मतलब है चरित्र, दुश्शीला। तो जब मैं रास्ते पर जाती हूं और कभी मुझे लड़कियों के पोस्टर नजर आते हैं, तब मुझे महसूस होता है कि यही शायद महर्षि वेदव्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार है, कि ये दुश्शीलाएं नहीं तो कौन है जो दूसरों को भी अपने मार्ग से भटका दे, चरित्रहीनता की ओर ले जाए, जिसका खुद का चरित्र दुष्टता का से भरा हो। आप लोग जैसे ही आकर हमें बताते तब पता चलता है कि टेलीविजन में आज जो सीरियल चलती है क्या चलती है, हा? कितनी दुश्शीलाएं मिलती है, हा? घर में पॉलिटिक्स कैसे खेलना चाहिए, ईर्ष्या कैसे करनी चाहिए, बदला कैसे, और उसमें अधिकतर जो महिलाओं का रोल दिखाया है, ये दुश्शीलाएं नहीं तो कौन है, है कि नहीं? और वो देखने वाले वो अपने जीवन के अंदर क्या ले रहे हैं, हाँ? कौन सा चरित्र अपना बना रहे हैं? कहते हैं ना, इसीलिए कहा वेद व्यास जी की मन की कल्पना को तो देखो कितनी सुंदर उसकी मन की, तभी कहा वो इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति था कि जो उसने समाधि अवस्था में ज्ञान प्राप्त किया उसको लिखने के लिए कोई मनुष्य नहीं था इस संसार में, कोई महर्षि नहीं था, साक्षात बुद्धि के देवता को आना पड़ा लिखने के। और उसके बाद महाभारत का युद्ध कहां हुआ, तो कुरुक्षेत्र के मैदान में। मैं पिछले साल कुरुक्षेत्र गई थी, वहां इतनी इंटरेस्टिंग बात मुझे जानने को मिली, शायद आप लोगों को पता हो या नहीं पता हो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वहां जब मुझे कुरुक्षेत्र में उस जगह पर लेके गए जहां गीता युद्ध हुआ था और वो म्यूजियम सारा दिखा रहे थे, तो उस समय मुझे पता चला कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था, स्थानेश्वर था और थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। स्थानेश्वर जो शिवजी का मंदिर है, महादेव का मंदिर है, उस मंदिर के नाम से उस स्थान का नाम था, थानेसर डिस्ट्रिक्ट में। आज भी थानेसर डिस्ट्रिक्ट है लेकिन कुरुक्षेत्र जो है उसका नाम स्थानेश्वर था। और 1974 में एक कलेक्टर वहां आए और जब उन्हें महसूस हुआ कि इतनी ऐतिहासिक घटना यहां घटी है तो इस स्थान का नाम कुरुक्षेत्र और इसको डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिक्लेयर किया जाना चाहिए, गांव से डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए, यानी 74 तक कुरुक्षेत्र का अस्तित्व ही नहीं था वर्ल्ड मैप पर। और शास्त्र में लिखा गया कि कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, ये सही है, आप इंटरनेट से सर्च करके देखिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। वो बहुत छोटा एक कस्बा था जिसका कोई अस्तित्व नहीं था, बहुत छोटा कस्बा ही था एक, 74 में उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया गया और लोग उसको स्थानेश्वर के नाम से ही जानते थे, कुरुक्षेत्र के नाम से नहीं जानते थे, हाँ थानेश्वर के नाम से ही जानते थे, जो हाईलाइट होकर के वर्ल्ड मैप में अगर कुरुक्षेत्र आया है तो 74 में आया है। आप सोचो, वही तो मैं कह रही हूं कि वेद व्यास जी ने उस समय ये कुरुक्षेत्र नाम लिख दिया, तो इसका मतलब ये नाम के पीछे भी उनकी कोई मन की कल्पना थी। कुरुक्षेत्र जो आगे उन्होंने 13वें अध्याय में उसको क्लियर किया, 13वां चौथा 14वां अध्याय में उसको क्लियर किया है कि कुरुक्षेत्र माना क्या, कर्म क्षेत्र, ये जीवन ही एक कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी है धर्म क्षेत्र भी है, जब उसमें वैल्यूज है तो धर्म क्षेत्र बनता है, जब उसमें वाइसेस है तो ये कुरुक्षेत्र बन जाता, संघर्ष का स्थान बन जाता है। उसने मनुष्य जीवन के साथ उसको भेंट किया है, इसीलिए उसका अस्तित्व दुनिया में दिखाया नहीं गया था, 74 में उसके बाद जो है उसको हाईलाइट में लाया गया। ये मुझे पिछले साल कुरुक्षेत्र जाने पर पता चला, तब मुझे और आश्चर्य लगा। और फिर मुझे कहा गया कि वहां गीता का ज्ञान सुनाया गया तो ज्योतिषर में मुझे ले गए, जहां पर दिखाते हैं कि ये वो स्थान था जहां रथ को लाकर खड़ा किया था और भगवान ने गीता का ज्ञान दिया, वो एक चबूतरा बनाया हुआ है वहां पर और वहां दिखाते हैं। तो उस समय मुझे कहा गया कि यहां अक्षौणी की सेना थी, कितनी अक्षौणी, वो भी 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों की साइड में और पांडवों की साइड में 7 अक्षौणी, माना 18 अक्षौणी सैनिक थे, 18 अध्याय और 18 दिन, ये सारी मन की कल्पनाओं से जुड़ी हुई बातें हैं, नहीं तो 18 18 18 फिगर नहीं आ सकता है ना। तो इसीलिए जब मुझे कहा 18 अक्षौणी सैनिक यहां खड़े थे, मैंने इंटरनेट में जाकर सर्च किया कि एक अक्षौणी माना कितने होते हैं, तो मुझे तब पता चला कि एक अक्षौणी माना इट्स अबाउट 47 लाख समथिंग ऊपर फिगर जो था, मैं एग्जैक्ट इसमें ला नहीं सकी हूं अभी तक, इसको स्लाइड में बनाया नहीं है कितने अक्षौणी माना, उसका सारा कैलकुलेशन जो किया है और उसमें कितने हाथी कितने घोड़े, अगर एक अक्षौणी माना 47,000 समथिंग है अगर, तो 18 अक्षौणी मतलब कितना हुआ? अब राउंड फिगर अगर 50 ले लो, चलो 50,000 ले लो, एक अक्षौणी माना 50,000 भी अगर गिनती कर लो, तो 18 अक्षौणी माना कितना हुआ? 9 करोड़ है ना? और आज की भारत की पॉपुलेशन कितनी है? माना उस समय हरियाणा की पॉपुलेशन कितनी होगी? और वो कुरुक्षेत्र का वो इतना छोटा मैदान, वहां 9 करोड़ लोग खड़े कैसे हुए होंगे? माना वही तो मैं कहा, तो इसका मतलब कुरुक्षेत्र का विस्तार कितना बड़ा होगा, और तब तक उसका अस्तित्व नहीं, 74 तक उस स्थान का अस्तित्व न हो, जिसका विस्तार अगर दिल्ली तक हो, माना 9 करोड़ अगर लोग हैं, इतना ही नहीं है, उसमें हाथी कितने घोड़े कितने ये सब, राइट? इतना ही नहीं, लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही सूर्यास्त हो जाता था, युद्ध विराम होता था, सब अपने अपने शिविरों में जाते थे, माना इतना रहने का बंदोबस्त था, तो कितना एरिया होगा? दिल्ली भी छोड़ो, पूरा भारत ही, तो पूरा भारत ही कुरुक्षेत्र है ना इसके हिसाब। और इतना ही नहीं, लेकिन रात में मिल करके साथ में भोजन करते थे, माना इतने लोगों का भोजन बनाने वाले कितने होंगे? वो सारा पॉपुलेशन गिनती करो ना आप। युद्ध करने वाले तो भोजन नहीं बनाएंगे, सारा दिन जो युद्ध कर रहा है वो तो भोजन नहीं बनाएंगे ना, तो 9 करोड़ अगर योद्धा है तो 9 करोड़ का खाना बनाने वाले कितने होंगे? सारा कैलकुलेशन आप करिए, पूरा हरियाणा तो छोड़ो, पूरा इंडिया आ जाता है, तो इसका मतलब ये पूरा भारत ही कुरुक्षेत्र है। यानी कभी हम लोगों ने ये डायरेक्शन में सोचा ही नहीं है कि कैसे महर्षि वेद व्यास जी ये बात लिखते हैं। यानी ये जो ज्ञान है, कहने का भावार्थ मेरा ये है कि ये जो ज्ञान है आज हर भारतवासी पर लागू होता है, अगर सारा भारत ही कुरुक्षेत्र है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, तो हर एक भारतवासी के जीवन के लिए गीता का ज्ञान है या नहीं है? है? अंडरस्टूड? तो इसलिए कहा कि जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपात्र चलने शुरू होने वाले हैं, और इंटरेस्टिंग बातें मैं बताती हूं आपको कि प्रेक्षपात्र चलने शुरू होने वाले हैं, शंखनाद गूंज उठा है, युद्ध के उत्तेजना के कोलाहल में संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है, ऐसे समय पर कहा जाता है कि अर्जुन कहता है मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं। और दोनों सेनाओं को जब देखा उसके बाद निराश हो गया, उदास हो गया, शस्त्र छोड़ दिया और भगवान को कहा आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब आप कल्पना कीजिए स्थिति को अगर, और वेद व्यास जी की बुद्धि से अगर देखना है ना, कि जहां वो लेके गया शंखनाद बज चुका है, हरेक ने अपने अपने शंख की घोषणा कर दी, हरेक महारथी ने अपना शंख बजा दिया, और उसके बाद भगवान उसका रथ बीच में ले जाते हैं, और सारा दृश्य देखने के बाद वो निराश हो गया, उदास होकर के बैठ गया और कायरता जैसी बातें करने लगा और फिर भगवान उसको गीता का ज्ञान देने लगे, 18 अध्याय का ज्ञान दिया, यानी 700 श्लोक उसमें सुनाए गए। और 700 श्लोक सुनाने में कितना समय लगा? नहीं, 700 श्लोक सुनाने में 3.5 घंटा, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री इट इज रिटर्न के 3.5 घंटा लगता है गीता का ज्ञान सुनाने में। तो 3.5 घंटा दुर्योधन जो इतना उतावला था, क्या उसने कोई रिएक्शन ही नहीं दिया? कैन यू इमेजिन कि वो इतनी पेशेंस धैर्यता रख के खड़ा होगा, 3.5 घंटा तक कुछ नहीं किया उसने? हाँ हाँ बराबर है, लेकिन 3.5 घंटा माना उसने कोई रिएक्शन नहीं बताया, सेनापति ने आदेश नहीं दिया, भले पालन करना पड़े, लेकिन जो इतना उत्तेजित था और वो रिएक्शन तो कर सकता था, वो रिएक्शन तो दे सकता था अपना, रिएक्शन तो दे सकता था कि नहीं दे सकता? कहाँ रिएक्शन है 3.5 घंटे तक, अगर चलो 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा हो, लेकिन 3.5 घंटे तक अगर कोई रिएक्शन न दे व्यक्ति, इतना पेशेंस अगर उसमें है। आदेश का भले पालन किया जाता था, लेकिन वो तो हर बात में लॉ अपने हाथ में उठा लेता था। दुर्योधन ऐसा व्यक्तित्व दिखाया है कि अगर कोई उसके रास्ते को रोकने का प्रयास करता था तो वो लॉ अपने हाथ में उठा लेता था। मना अगर रुके भी, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि चलो रुके भी, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं, गुस्सा तोड़फोड़ कुछ रिएक्शन नहीं बताया उसका। हाँ इसीलिए ना, इसीलिए तो कह रही हूँ कि व्यक्ति के अंदर फिर आगे लड़ने की ताकत नहीं, कुछ युद्ध के नियम के कारण। तो इसका मतलब ये कोई हिंसक युद्ध की तो बात हो नहीं सकती है, कोई हिंसक युद्ध, मेरा भाव समझो आप, मैं किस भाव कहाँ ले आना चाहती हूँ आपको, कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात ही नहीं है। लेकिन आज हर मनुष्य जीवन एक संघर्ष वाला जीवन हो गया है। नियम के अनुसार अंधेरा हो जाता था, उस समय इतनी फ्लड लाइट्स नहीं थी कि भाई रात के समय भी क्रिकेट खेला जाए तो उतना उजाला कर देते कि रात के समय भी क्रिकेट खेल सकते। उस समय ऐसी फ्लड लाइट्स का इंतजाम नहीं था उनके पास, तो उनको रोकना ही पड़ता था। नियम क्या, वो रोकना ही पड़ता, अंधेरे में दिखता ही नहीं है तो क्या चलाएंगे तीर। भले मंत्रों से चलता था, ये तो यही तो मैं कह रहा चाहती हूँ कि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार देखिए आप। मैं उस बात पर ले आना चाहती हूँ कि ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, अहिंसक युद्ध की बात है। क्योंकि आज हर व्यक्ति, भारत का हर व्यक्ति एक संघर्ष वाले जीवन से गुजर रहा है। एवरीबडी इज फाइटिंग, कौन फाइट नहीं कर रहा है, कौन युद्ध में नहीं है? कर्म क्षेत्र पर किसको युद्ध नहीं करना पड़ रहा है? आप लोगों को युद्ध करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? तो हर व्यक्ति योद्धा है। हाँ, इसमें पांडव और कौरव अलग अलग है, 7 अक्षौणी पांडव के साइड में है और 11 अक्षौणी कौरव के साइड में है। और सफरर्स कौन होते हैं? ये जो धर्म क्षेत्र पर होते हैं उसको थोड़ा सफर करना पड़ता है, युद्ध के मैदान में तो सारे ही है। तो माना वेद व्यास की जी मन की कल्पना है, वो आज के युग के अंदर हर व्यक्ति को कैसे गीता का ज्ञान अपने जीवन में जीने की कला सिखा सकता है, उपयोगी होता है ये गीता का ज्ञान, ये भाव है। नहीं तो आज महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति कलयुग के अंदर गीता को पढ़ करके अहिंसा के बल से अगर स्वराज्य ले सकते तो वो साक्षात भगवान। क्या अहिंसा के बल से पांडवों को स्वराज्य नहीं दे सकते थे क्या? इतनी ताकत नहीं थी क्या भगवान की? इससे तो फिर महात्मा गांधी महान हो गए। भाव मेरा समझो आप कि ये हिंसक युद्ध की बात हो ही नहीं सकती है, ये पूरा अहिंसक युद्ध है कि आज हर भारतवासी जो युद्ध कर रहा है, संघर्ष में अपना जीवन जी रहा है। जीवन के कई मोड़ आते हैं जिसमें तो वो सफल होता है, लेकिन कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जिसमें संघर्ष करते करते व्यक्ति थक जाता है, उदास हो जाता है, निराश हो जाता है, दिल शिकस्त हो जाता है, हताश हो जाता है, अर्जुन की तरह ही। और उस समय वो भगवान से ही एक संवाद करने लगता है कि हे प्रभु, अब मुझे ये युद्ध नहीं करना है। करते हैं कि नहीं आप अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के साथ संवाद नहीं करते कि हे प्रभु कब तक ये युद्ध करते रहेंगे? करते हैं कि नहीं करते हैं? ये हमारे लिए वेद व्यास जी उस समय समाधि अवस्था में कलयुगी लोगों को ही देखा था, इतने करोड़ों भारत की जो पॉपुलेशन है उसको देखा था, और उसी का ही चित्रण उस समय उसने अपनी मन की कल्पनाओं से किया था। जैसे नॉस्ट्रोडेमस के लिए दिखाते एक गोले के अंदर उसने भविष्य को देखा था कि क्या होगा भविष्य के अंदर, और उसने लिखा था, लेकिन कोई समझ नहीं पाए क्योंकि उसने पोएट्री फॉर्म में लिखा था। ठीक इसी तरह वेद व्यास जी ने अपनी समाधि अवस्था में देखा था फ्यूचर को कि कलयुग जब आएगा, घोर पापाचार का समय जब आएगा, तब क्या होगा इस संसार का हाल, भारत का हाल क्या होगा। ये उस समय उन्होंने समाधि अवस्था में देख करके उन्होंने भी श्लोकों के फॉर्म में लिखा, इसलिए आज लोग समझ ही नहीं पा रहे है। तो अपनी कहानी है ये, अपनी कहानी। प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि इस समय है मनुष्य। आप सोच सकते हैं नहीं तो कि जब भगवान ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हें मैं चाहिए या मेरी अक्षौणी की सेना चाहिए, और दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, अक्षौणी की सैनिक चाहिए, अब जो सैनिक वो लेकर के गए वो सैनिक थे किसके? कृष्ण के थे ना। तो वो सैनिक किसको वफादार रहेंगे? अगर उसका मालिक सामने की साइड पर है तो सैनिक को जिसको खिलाया पिलाया बड़ा किया, तो वो सैनिक किसको वफादार रहेंगे? दुर्योधन को या उसके मालिक को? वही ना, मालिक ने भले कहा लेकिन फिर भी मालिक के सामने शस्त्र उठाने की हिम्मत, भले लेकिन फिर भी मालिक को जो साथ दे रहे हैं उस पर भी वो कैसे शस्त्र चलाएंगे? श्री कृष्ण ने तो कुछ नहीं कहा, श्री कृष्ण सेना भले दे दी लेकिन कहा कुछ नहीं सैनिकों को। अर्जुन को ही दिया और किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन जिसको खिलाया पिलाया और इतना उनको पाल पोस करके शक्तिशाली बनाया, वो सैनिक को किसको वफादार रहना? लेकिन ये तो वेद व्यास जी की मन की कल्पना जो है, मैं भाव ये बताना चाहती हूँ कि कैसे, क्योंकि कई लोग हमसे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं, महाभारत का युद्ध हुआ ही नहीं। हम यही कहते, कौन कहता नहीं हुआ, हो रहा है ना, घर घर में हो रहा है, घर घर में हो रहा है ना, कौन कहता है नहीं हुआ। अब इतना मैंने सारा आपको चित्र सामने क्लियर करने के बाद भी अगर आप समझ सकते हैं, और आगे भी दिखाएंगे। अच्छा, वो उस काल में थे इसलिए। नहीं दिया, कहने का भाव आप लोगों के माइंड को मैंने एक पत्थर डाला है, अब वो रिपल्स क्रिएट कर रहा है और करता रहेंगे। तभी तो मैंने कहा कि अंत में आप यही कहेंगे, इस हिसाब से तो 18 अध्याय पूरा सुनना चाहिए हमको। सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? जिसमें अगर एक एक बात में अगर इतनी गहराई है तो सुनना चाहिए नहीं सुनना चाहिए? इतना सुंदर है ये गीता का ज्ञान। तभी मैंने कहा कि जिस एस्पेक्ट को आपने कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं, उन चीजों को हम और कैसे दैट इज रिलेटेड इन द प्रेजेंट डे लाइफ, उसको हम साथ में जोड़ते हैं कि आज की दुनिया में, आज की जीवन शैली में उसकी उपयोगिता क्या है, ये हम बताते हैं इसको इसके माध्यम से। तो इसीलिए कहा कि कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां आसुरी और दैवी शक्तियां हैं जो एक दूसरे के सामने तैनात है। आज की दुनिया में मनुष्य को जब मनोयुद्ध करना पड़ता है, एक तरफ उसका मन कहता है कॉम्प्रोमाइज कर लो, बुराई के साथ में चलने लगो, दूसरी ओर उसका मन कहता नहीं चलो, तो कितना युद्ध करना पड़ता है हमारे अंदर ही, कितना युद्ध चलता है कि वैल्यूज को लेकर चले या कॉम्प्रोमाइज करे, क्या करे, तो कितना युद्ध पहले करना पड़ता है। तो ये कुरुक्षेत्र हमारे भीतर है और उसमें जिस प्रकार की प्रकृति है आपकी, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उस तरफ चले जाएंगे। तामसिक प्रकृति वाला व्यक्ति होगा तो कौरों के तरफ जाएगा, कौरों का हिस्सा बनेगा। सात्विक प्रकृति का होगा वो पांडवों का हिस्सा बनेगा, जो बहुत कम है, मुट्ठी भर है, लेकिन फिर भी विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई, कौरवों की विजय नहीं हुई है ना। ये मर्म वेद व्यास जी हम तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस दुनिया में जब जीना है, आपके सामने जब ऐसी सिचुएशन आए, आपके सामने दुर्योधन, दुशासन सब खड़े हो, उस समय आपके अंदर जो युद्ध चल रहा है, ये कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं है, लेकिन ये अहिंसक युद्ध की बात है। कैसे? उस बात को मैं और एक एग्जाम्पल देकर के स्पष्ट करती हूं कि मान लो कि आपका बच्चा है, गली में खेल रहा है दूसरे बच्चों के साथ, और उस गली में एक बच्चा है जो बहुत तंग करता है आपके बच्चे को, बार बार उसको तंग करता है, जब भी वो खेलने जाता है उसको तंग करता है, और हर रोज वो उसकी शिकायत लेकर आपके पास आएगा कि आज भी उसने ऐसा किया, आज उसने ऐसा किया। फाइनली एक दिन आप उसको क्या कहेंगे? आप तो बच्चों के साथ लड़ने नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे अपने बच्चे को? अरे मारो गोली, उसके साथ खेलने क्यों जाता है तुम, तेरे को दूसरी गली नहीं दिखाई देती है? कहेंगे कि नहीं? मारो गोली उसको, दूसरी गली में जा, कहेंगे? अब मारो गोली का मतलब बंदूक उठा के गोली मारने के लिए कहा? भगवान ने भी कहा मारो इन सबको, यानी छोड़ो इन सबको। भगवान कोई हिंसक युद्ध की बात नहीं कर सकता है। अहिंसा परमो धर्म, जब परम धर्म ही अहिंसा, वो ही भगवान कहते हैं, वो हिंसा के तरफ प्रेरित कैसे कर सकते हैं? इसलिए जब उसने कहा मारो इन सबको, यानी छोड़ो इन सबको, भूलो इन सबको, कोई गोली मारने की बात नहीं किया है। आप भी अपने बच्चे को जब कहते हैं, ये एक मुहावरा है, जब आप कहते हैं अपने बच्चे को कि मारो गोली उनको, दूसरी गली में जाकर खेलना कल से, रोज रोज उसकी शिकायत लेकर नहीं आनेगा घर में, कहेंगे? कहेंगे या नहीं कहेंगे? भगवान ने यही कहा, क्योंकि आज का मनुष्य यही भाषा समझता है, मारो इन सबको, यानी छोड़ो इन सबको, जो स्वार्थी है, जो गलत कार्य करने वाले हैं, दुर्योधन ने क्या कहा, धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति नहीं मुझ में और अधर्म मैं छोड़ नहीं सकता। आज की दुनिया का कौन सा व्यक्ति ऐसा होगा जो धर्म क्या कहता है नहीं जानता है? कौन सा व्यक्ति होगा जो अधर्म किसको कहा जाए वो नहीं जानता है, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति कितनों में है और अधर्म को छोड़ने की शक्ति कितनों में है? कितनों में है? बस दिखता है, दिखता है। इसीलिए दिखा है कि भले कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे लेकिन फिर भी उसका सर्वनाश ही होता है। हाँ जी, हाँ, पराजित नहीं हो सकता है। यही मैसेज गीता देना चाहती है कि आज की दुनिया में आपके सामने ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसी बातें आएंगी, लेकिन आप अर्जुन बन, आप अर्जुन बन जाओ, भीम बन जाओ, तो कभी पराजित नहीं होंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको कहना चाहती हूँ और एक एग्जाम्पल दे करके बताना, शायद आप लोग ने बचपन में ये खेल सभी ने खेला होगा, यहाँ पर भी कभी कभी कम्युनिकेशन के वर्कशॉप्स में ये खेल कराते हैं और आपने खेला होगा कि एक गोलाकार में सबको खड़ा कर दिया जाता है। स्कूल में आपने खेला होगा, गोलाकार में अगर एक क्लास के बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, सबको एक गोलाकार में खड़ा कर दिया जाता है। एक बच्चे को बुलाकर टीचर उसके कान में कहानी कहती है, वो उसको जाकर दूसरे के कान में सुनाना होता है, दूसरा तीसरे के कान में सुनाता है, तीसरा चौथे के कान में सुनाता है। जब 50वें बच्चे तक वो बात आती है, वही रहेगी या बदल जाएगी? बदल जाएगी। गीता को लिखे कितने साल हो गए? 5000 साल। कितनी बार इंटरप्रिटेशन हुआ है और आज जिस फॉर्म में है वही होगी या बदल गया होगा? क्या होगा? हाँ, यस, ओरिजिनलिटी पूरी खत्म हो गई है। हाँ जी, हाँ, वो तो मिडिल एज में आया ना, ये मिडिल एज में आया। हाँ, हुई थी, हाँ हुई थी। मना भावार्थ ये है कि गीता का जो संघर्ष था, गीता का ज्ञान जब दिया गया उस समय जो संघर्ष था, उस समय व्यक्ति का मनोयुद्ध ज्यादा चलता था, बाहर के संघर्ष से भी अंदर का संघर्ष ज्यादा था, और इसीलिए ये ज्ञान की आवश्यकता पड़ी। नहीं तो आप सोचो कि युद्ध के मैदान है, वहां भगवान उसको 3.5 घंटा ज्ञान देने लगे। अगर आज दो व्यक्ति अगर लड़ रहा हो ना, एक दूसरे के सामने तैनात हो गए हो, और वहां उसको आप ज्ञान देना शुरू करो, क्या कहेंगे? आप सोचो, आप कल्पना करो। तो ये वेद व्यास जी की जो मन की कल्पनाओं का विस्तार है, ये प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने सारा लिखा था, ताकि आज का मनुष्य जब भी जीवन में निराश हो, हताश हो, तो वो गीता को एक माध्यम बना सके, जहां से वो प्रेरणा प्राप्त कर सके, अंदर में ताकत भर सके और अंदर में सशक्त होकर के पुनः जीवन के संघर्ष में आगे बढ़ सकता है। इसीलिए, क्योंकि आज की दुनिया में किसी के पास हिम्मत भी नहीं है और ना मोटिवेट करने की ताकत है किसी को, ऐसी चीज ही नहीं है। भले कितने भी मोटिवेशनल स्पीकर आ जाए, कितने भी HRD वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम रख ले, लेकिन उसके बाद भी जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं, घर में परिवार के अंदर सुसाइड करते हैं, आप समझ सकते हैं कि ऐसे वक्त में अगर वो गीता पढ़ता है अपनी इच्छा से, तो उसमें से कुछ तथ्य उसको प्राप्त होते हैं जो अंदर से उसको एम्पावर कर सकता है और एम्पावर करके पुनः कर्म क्षेत्र के मैदान में वापस आ सकता है और उस कर्म क्षेत्र के समय जो उसके सामने युद्ध करने वाली बातें हैं उसमें विजयी होने की पूरी हिम्मत जुटा सकता है। नहीं तो वहां एक युद्ध के मैदान में अगर कोई ज्ञान देना शुरू करे, इसलिए मैंने पहले पूछा क्या दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं किया? अगर वहां ज्ञान देना शुरू करे क्या करता था? कहेगा छोड़ो, अपने सैनिक को भी उकसा देता था और साथ ही साथ अपने सेना नायक को भी कहता था कि यही मौका है, चलो युद्ध करो, क्योंकि उनके जीवन के अंदर धर्म का स्थान ही नहीं था, धर्म के मार्ग पर चलने का या नियमों पर चलने का स्थान ही नहीं था। उसने कह दिया था धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन धर्म पर चलने की शक्ति नहीं मुझ में और नियम धर्म पर चलने की शक्ति नहीं मुझ में और अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता। इसलिए कहा कि ये कुरुक्षेत्र का युद्ध, तो आज भारत पूरा ही कर्म क्षेत्र हो गया है जहां हर व्यक्ति को संघर्ष वाला जीवन जीना पड़ रहा है, हर घड़ी वो युद्ध में है। नहीं तो आप सोचो, 3.5 घंटा ज्ञान दिया, और एक लॉजिक मैं आपको देती हूं, 3.5 घंटा ज्ञान दिया और उस ज्ञान में उनको जब विराट रूप दिखाया कि कौन हूं मैं तुझे कहने वाला युद्ध करने के लिए, और वो रियलाइजेशन के बाद कि ये तो साक्षात भगवान है, उसके बाद भी वो उसको ऑर्डर करे कि अच्छा चल अब मेरा रथ चलाओ, इतनी हिम्मत किसी व्यक्ति में हो सकती है कि भगवान का रियलाइजेशन करने के बाद भी उसको आदेश दे कि चलो अब मेरा युद्ध ये रथ चलाओ, इतनी हिम्मत हो सकती है किसी मनुष्य की? हाँ, फ्रेंड्स भले हो लेकिन फ्रेंड कौन था? श्री कृष्ण फ्रेंड था। जब विराट रूप दिखाया, वो कृष्ण का जो संपूर्ण स्वरूप, यानी जो ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप देखने के बाद, कृष्ण का नहीं ईश्वर का संपूर्ण स्वरूप देखने के बाद फिर वो आदेश दे कि हाँ चलो अब मेरा रथ चलाओ, इतनी हिम्मत तो मैं नहीं समझती हूँ किसी के अंदर होगी आज के युग के अंदर। वो तो आगे 18 अध्याय में आता ही है, इसलिए मैंने कहा अब आपके अंदर पत्थर जो फेंका है ये हलचल तो क्रिएट करेगा, आप लोगों की आपसी डिस्कशन भी बहुत होगी। हाँ, नहीं नहीं ऐसी नहीं हो सकती है। इसलिए कहा कि वेदव्यास जी ने समय को देखा था अपनी समाधि में, और जब समय को देखा था तो समय को देखते हुए उसने गीता का ज्ञान दिया, ताकि आज के युग में जो हताश और निराश हो जाए उसको कम से कम कोई साधन तो हो जहां से मोटिवेशन मिल सके। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत श्रेष्ठ है। पहला अध्याय जब आता है विषाद, कुरुक्षेत्र के युद्ध का मैदान का दृश्य, इसके मुख्य दो पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, इसके साक्षी अक्षौणी सैनिक हैं, युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा के पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है। नहीं तो भगवान उसके साथ थे, ये जिसको निश्चय होता है। आज अगर आप रास्ते पर चल रहे हैं, आप भले कमजोर हैं लेकिन आपके साथ अगर कोई पहलवान चल रहा हो तो उसके बाद कैसे निडर हो जाएंगे, डरेंगे अंधेरे कैसे? नहीं डर सकते हैं। अरे भाई पहलवान, ऐसे भगवान जिसके साथ था उसके बाद भी उसका हृदय निराशा में डूबे, इस भय के कारण के युद्ध में वो अपने मित्र संबंधियों को खो देगा। अब ज्ञान हुआ कि मैं अपने मित्र संबंधी को खो दूंगा, विषाद क्यों आया? तो लोग क्या कहते हैं, जब उसने देखा भीष्म पितामह को, द्रोणाचार्य जी को, सबको देखा तो कहा मैं इन सबको कैसे मार सकता, ऐसा नहीं था। अब मैं आपको रियल बताती हूं, ऐसा नहीं था। क्योंकि जब अज्ञातवास में ये लोग थे, 13वें साल में जब अज्ञातवास में थे, उस समय विराट राजा के नगर में छिपे हुए थे और दुर्योधन ढूंढता फिर रहा था, क्योंकि उसके चैलेंज के हिसाब से, उसकी शर्त के हिसाब से अगर अज्ञातवास में वो पहचाने जाएंगे तो पुनः 12 साल और 1 साल अज्ञातवास। ये मौका दुर्योधन छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए अज्ञातवास में उसने उस समय में 13वें साल में उसने ढूंढना चालू कर दिया। कौरव सेना ने लेकर के, कौरव सेना पूरी पांडवों को ढूंढना शुरू कर दिया। नहीं नहीं, विराट राजा के नगर में छुपे हुए थे, जो नेपाल में विराट नगर है, विराट राजा के नगर में छुपे हुए थे। वो लक्षाग्रह वहां था, लेकिन जब 13वां साल था, अज्ञातवास जो था, उस समय विराट राजा के नगर में छुपे हुए थे। हाँ, राजा विराट जो अभी नेपाल में आता है, विराट राजा, क्योंकि मैं वहां होकर के आई, मैं इन सारी स्थानों पर जाकर के आई हूँ, तो उस समय जो है वहां पर कहा कि यहाँ पर वो छिपे हुए थे। तो दुर्योधन जो ढूंढता फिर रहा, नहीं जयपुर में नहीं था, अभी भी वहां पर बोर्ड लगा हुआ है कहाँ पर कौन सा विस्तार था, वो आपको मिलेगा। आप विराट नगर में जाएंगे, नेपाल जाएंगे, तो आपको वहां पर वो बोर्ड मिलेगा जहाँ दिखाते हैं कि ये स्थान जो था वहां पर पांडव लोग छिपे हुए थे, जहाँ विराट राजा की नगरी थी। तो कहने का भावार्थ था कि विराट राजा के नगर में जब ये छिपे हुए थे, उस समय दुर्योधन ढूंढता फिर रहा था और उसको जैसे ही डाउट आया कि ये विराट राजा के नगर में छिपे हुए यही है, तो पूरी सेना लेकर चढ़ाई किया उसने। उस समय भी भीष्म पितामह था, द्रोणाचार्य जी भी थे, सभी थे, कृपाचार्य, द्रोण, सभी उसके जो बड़े थे वो सभी थे। उस समय अर्जुन ने सिंगल हैंडेड उन सबको परास्त कर दिया, तो तब उसका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ, निराशा में, डिप्रेशन में नहीं गया कि अब मैं ये भीष्म पितामह को कैसे मारूं, ये द्रोणाचार्य जी को कैसे मारूं, कृपाचार्य, तब क्यों नहीं हुआ? मारा तो नहीं, लेकिन परास्त तो किया ना, तो महाभारत के समय भी परास्त करना ही था, बराबर है। लेकिन महाभारत के समय फिर डिप्रेशन का जरूरत नहीं ना, जो पहले एक बार उनको फेस कर चुका है। डिप्रेशन में व्यक्ति कब जाता है कि जब वो फेस नहीं कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति एक बार फेस कर चुका है उन सबको और उनको हराया, भगाया वहां से, तो महाभारत के समय भी फेस करने में क्या प्रॉब्लम थी उसकी? उस हाँ, नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो था ही नहीं। इसीलिए तो कहा ना, भीष्म पितामह तो इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो मरने वाले तो थे नहीं। फिर उसको फेस करने में, जब एक बार फेस कर चुके तो दोबारा फेस करने में क्या प्रॉब्लम थी? फिर डिप्रेशन आने का कोई व्यक्ति को डिप्रेशन कब आता है? जब कॉन्फिडेंस उसका गायब होता है। लॉजिक के हिसाब से, साइकोलॉजी के हिसाब से देखो कि आप स्टडी अगर किया हो साइकोलॉजी, तो उसमें ये दिखाता है कि व्यक्ति जब किसी को फेस पहली बार करने जाता और नहीं होता है, तब कॉन्फिडेंस उसका डगमगाता है और वो डिप्रेशन में जाता है। लेकिन एक बार जो टेस्ट आपने पार कर लिया, फेस कर दिया, उसके बाद कॉन्फिडेंस गायब होने का मतलब ही नहीं आता है। अब यही तो मैं आपको पूछा, इसीलिए तो पूछा कि जो बात आज हमारे सामने है वो कितनी सत्य है या कितनी उसमें से ओरिजिनलिटी गायब है। ऐसी बात नहीं है, मैं आपको सत्य बताती हूँ अभी। अभी लॉजिक में आपको बताती हूँ, उसके बाद मुझे कहना आप। हाँ उनके उनके सेना में इतना दम नहीं था। मैं आपको बताती हूँ, मैं वास्तव में, हाँ मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद आप मुझे बताना कि मैं गलत हूँ, मेरा एनालिसिस गलत है या सही है, ये आप मुझे बाद में बताइएगा, है ना। कि उसका हृदय जो डूबता जा रहा था वो मित्र संबंधियों के भय से, खोने के भय से। लेकिन कौन से मित्र संबंधी को खोने के भय से? क्योंकि उसको पता था कि अब तक वो जब युद्ध करता रहा तो वो पांच पांडव सभी की गारंटी भगवान ने ली हुई थी बचाने की, और इसीलिए वो युद्ध में हमेशा विजयी होते रहे। लेकिन महाभारत के युद्ध के समय उसके पुत्र पौत्रे भी खड़े थे, उसके पुत्र पौत्रे भी खड़े थे, और उन पुत्र पौत्रों को खोने का डर हर पिता को होता है। पिता को, सामने वाले को अगर अन्याय के पक्ष में अगर आपके बड़े भी बैठ जाए ना, तो एक बार आपकी जबान अगर उनके सामने खुल गई तो दोबारा भी आप उनको फेस कर लेते हैं। लेकिन जहां आपके पुत्र पौत्रे अगर उसमें खड़े हो, और उस समय उनको खोने का जब डर होता है ना एक बाप को, वो बहुत अधिक होता है। अर्जुन जो निराशा में डूब रहा था वो इसीलिए कि इस बार ये युद्ध में उसके पुत्र पौत्रे खड़े थे, और उसको पता था कि भगवान ने हम पांच पांडवों की तो गारंटी ली है, लेकिन मेरे पुत्र पौत्रों की गारंटी नहीं ली है, और उन सबको अगर मैं खो दूंगा, उसके बाद अगर मुझे राज्य मिल भी गया तो मैं उसको सुख से भोग सकूंगा कि हर बार मेरा मन खाता रहेगा कि मैंने अपने बच्चों की बलि चढ़ा करके ये राज्य प्राप्त किया है। ये डिप्रेशन का कारण था उसका। अब बताओ मुझे, ये डिप्रेशन का कारण, सामने वाले पक्ष में जो खड़े थे उसका किसी का डर नहीं था, उसको खोने का डर था ही नहीं। उनको खोने का जो डर था, कोई भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य को खोने का डर नहीं था, जो अधर्म के पक्ष में बैठ गए हैं उसको खोने का क्या डर होता है? कुछ नहीं। लेकिन जहां अपने बच्चों को खोने का डर, और उस बात को आपने अच्छी तरह समझा कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई उस समय कितना विचलित हो गया था अर्जुन। हर बाप की जीवन के अंदर कर्म क्षेत्र में जब भी वो संघर्ष करता है, और हर संघर्ष में जब वो विजयी होता भी है, लेकिन जिस संघर्ष में अगर उसके बच्चों को खोने का डर होता है, उस समय वो कई बार अपनी वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करता है कि नहीं करता है, बताओ। यही बात थी। यस, इसीलिए कहा कि गीता का ज्ञान जिस तरह से हमने समझा है ना वैसा नहीं है। आप गहराई से सोचो। आज एक जज होता है ना, जब जज की कुर्सी पर बैठा होते है, इसके सामने जो भी मुजरिम आता है सबका केस सुन करके उसका सुनवाई होने के बाद फैसला देता है ना, जिसको फांसी पर चढ़ाना है चढ़ा देता है, जिसको जीवन मृत्यु का दंड देना है या जिसको कारावास का सजा देना है सबको सुना देता है, बिना किसी हिचक के वो सुना देता है। लेकिन मान लो कि एक दिन उसी कटघरे में उसका अपना बेटा ही कोई ऐसा गुनाह करके आए जिसकी सजा मौत है, सजाए मौत, उस वक्त वो जज की हालत क्या होगी? वो अपील करेगा कि नहीं करेगा? सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर जाना पड़ेगा तो जाएगा कि नहीं जाएगा? जबकि खुद को मालूम है उसका गुनाह ऐसा है, माफी नहीं है, सजाए मौत है, लेकिन पुत्र मोह ऐसी चीज होती है कि उस समय उसको अगर लड़ना पड़े, अपील करना पड़े, तो अपील भी करता है। अर्जुन यही अपील कर रहा था भगवान को, अपील यही कर रहा था। उस समय वो जज भी अपील करता है और कहता है आजकल के नौजवान कभी कभी संग दोष में आकर के राह भटक जाते हैं, हमें उन्हें सुधरने का एक मौका देना चाहिए, ऐसी कलम लगानी चाहिए न्याय में कि भाई उनको सुधरने का कोई अवसर होना चाहिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? जब पहले पहले नौजवानों को उसने सजाए मौत दे दिया, उस समय उसको ये होश नहीं आता है कि भाई आजकल के नौजवानों को सुधरने का एक मौका देना चाहिए? वो नहीं आएगा। वो सूझ तभी आती है जब अपना बेटा उस कटघरे में आता है। इसी तरह अर्जुन को जो डर था, ये डिप्रेशन का जो कारण था, जो शस्त्र उसने छोड़ दिए दोनों तरफ की सेनाओं को देखने के इस तरफ इतने महारथी है वो हमें नहीं मार सकेंगे, लेकिन मेरे बच्चों को ये जो सामने खड़े हुए हैं उनको नहीं बख्शेंगे। और सचमुच ऐसा हुआ, इसीलिए उसको डर था। और आज हर समाज के अंदर, समाज के अंदर पिता को जब अपने पुत्र को खोने का डर आता है ना, तब वो डिप्रेशन में ही जाता है अर्जुन की तरह। जीवन के संघर्ष की बात है, वहां अगर उसको वैल्यूज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है तो वो करेगा। उस समय अपने सिद्धांतों को पकड़ के नहीं बैठता है, कोई बाप नहीं बैठता है, लेकिन उस समय भगवान ने उसको यही ज्ञान दिया कि ये मोह को त्याग कर दो। नष्ट मोहा स्मृतिर लब्धा का पाठ पढ़ाया है ना, नष्ट मोह, इसका मतलब किसके सामने युद्ध करने की बात थी, कोई व्यक्ति के सामने की नहीं। काम क्रोध मोह राग द्वेष, इसको छोड़ने की बात थी उसके सामने। ये तेरे दुश्मन है, इसको तुम मारो, इसको तुम खत्म करो। कोई व्यक्ति को मारने की बात तो कही नहीं है। हो रहा है ना अभी, वह भी तो है, कह रहे हैं कि घर घर में हो रहा है, वैसा ही हो रहा है ना। आज हर व्यक्ति कहाँ खड़ा है? आज आप अपनी कंपनी में खड़े हैं तो वो क्या है? ये कुरुक्षेत्र नहीं तो क्या है आपके लिए? वो जगह इतनी छोटी है, मैंने कहा तो वहाँ अक्षोणी की सेना खड़ी भी नहीं हो सकती। वो तो बना दिया, ऐतिहासिक बना दिया, जब 74 तक उसका अस्तित्व नहीं था, बाद में वो कलेक्टर को लगा के नहीं बना दो, यहाँ कुछ बना दो, यहाँ कुछ बना दो, और यहाँ बना दिया। बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये हर घर में, हर जीवन में हो रही है। हाँ, अब वो तो आपको सोचना है, मैंने सारे लॉजिक दे दिया, अब आपको सोचना है कि ये हुई नहीं हुई, ये डिस्कशन आपका है, ठीक है ना। गीता का ज्ञान बहुत गुह्य है, बहुत सुंदर है, एक एक बात को आप समझेंगे तो लगेगा कि सचमुच ये तो कितनी अच्छी बातें हैं, लेकिन हमने कभी उस दृष्टिकोण से न देखा उसको, न समझा उसको। तभी तो कहा गीता के रहस्य का उद्घाटन, अभी तो पहला ही उद्घाटन किया है मैंने, अभी तो पहला ही एक ही चैप्टर का उद्घाटन किया है, पहला चैप्टर। आप सोचो अभी 18 चैप्टर बाकी है ना, लेकिन हमें तो आज्ञा नहीं है कि यहाँ मैं 18 चैप्टर आपको सुना दूं, इसलिए यहाँ ही उसको समाप्त करती हूँ। 2 मिनट साइलेंस में बैठ। हाँ, हाँ, आप हमारी सुन लेना, उसके बाद आपको किसी की सुनने की इच्छा ही नहीं होगी। मिलती है, 18 अध्याय हमने किया है, 2 DVDs में है, आप ले सकते हैं और सुन सकते हैं, पूरा ये स्लाइड्स के साथ आपको समझने को मिलेगा। हाँ, सोचने की बात है कि द्वापर में, अगर द्वापर में भगवान ने गीता का ज्ञान दिया हो तो क्या गीता के ज्ञान से कलयुग की रचना हुई? सोचने की बात है। इसीलिए कहा कि ये बातें जो है अभी तो एक एक पर्दा मैं खोलूंगी ना तो आपको समझ में आएगा। माइथोलॉजी तो कहते ही है ना, माइथोलॉजी तो कहते ही है ना, फैक्ट्स तो है ही नहीं ना। इसके पीछे जो मर्म है समझाने का, जो ऋषि मुनियों ने लिखा है जिस उद्देश्य से, वो आज की दुनिया के लोग समझ नहीं पाए और उसको एज इट इज वो कथा, जैसे हमने कहा कि मैंने अगर एक बच्चे को सच बोलना चाहिए झूठ नहीं बोलना चाहिए ये मर्म अगर समझाना चाहा और उसके लिए अगर मैं कल कहानी सुनाती हूँ और वो बच्चा उस कहानी को ही रियल मान ले, मानेगा ना, मान करके उसमें से अगर प्रेरणा ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी को रियल फैक्ट समझने लगे तो ऐसी फैक्ट तो कुछ हुई नहीं थी। वो समझ में तो बाद में आएगा ना, तो इसीलिए मैं कहती हूँ अब कौन सी एज में समझेंगे। हाँ तो इसीलिए तो इसी तरह हम अभी आपको समझा रहे हैं। हाँ तो हम अभी आपको समझा रहे हैं तो अभी भी आप नहीं समझेंगे और उसको ही फैक्ट मानते रहेंगे तो किस एज में समझेंगे। हाँ ठीक है, अच्छा अभी तो एक ही पर्दा खुला है, अभी तो सारे पर्दे बाकी है ना, लेकिन आप वो डीवीडी ले जा सकते हैं जिसको आप कर सकते हैं, भले फिर उसके बाद और गीता पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा कितना शैलो है, कौन सी गीता में डेप्थ है, कहाँ डेप्थ है, कितनी डेप्थ है। रामायण की कैसेट भी मिलती है, रामायण भी मिल रही है। रामायण तो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो लिखा है वही है, तो उन्होंने अपनी मन की कल्पनाओं से जो लिखा है, क्योंकि रामायण घटने से पहले उन्होंने लिख दिया, ऐसा दिखाते हैं ना, तभी तो सीता जी उनके आश्रम में गए, उनको पता था कि आने वाले, तो माना उन्होंने पहले से ही वो कल्पना से लिख दिया था ना। हाँ सही बात है ना, वही तो इसीलिए तो मैंने कहा कि वाल्मीकि जी की भी कल्पनाओं का विस्तार है, उन्होंने भी ये बात स्पष्ट की है, लेकिन ये बातें आपको कोई सुनाएगा नहीं, आपको ब्रह्म में रखा गया है। आज मैंने ब्रह्म का पहला ताला खोला है, आप इसमें से बाहर आओ, उस ब्रह्म में नहीं जियो, बाहर आओ।